दिन भर 4 जनवरी दिन सोमवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। पठानकोट में हमले के लगभग 60 घंटे बाद भी अभियान है जारी। अब तक 5 चरमपंथियों की मौत। सरकार ने सुरक्षा बलों को सराहा।
ये उद्देश्य था सिक्योरिटी फोर्सेस का कि मिनिमम कैजुअल्टीज हो, उनको या पकड़ लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचाया जाए जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल हो।
लेकिन क्या हमले के बाद की स्थिति से निपटने में कोई चूक हुई? करेंगे विश्लेषण। और जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश, क्रिकेट से दूर रखे जाएं राजनेता और वैध हो सट्टेबाजी।
जो सोच है लोढ़ा कमेटी की वो मेरे ख्याल से सही, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वो मैकेनिज्म क्रिएट हो जिसमें ये बातें पटरी पे आ सके, सही ढंग से चल सके।
कार्यक्रम में आपकी चिट्ठी भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने मीडिया को बताया कि पठानकोट में अब तक कुल 5 चरमपंथी मारे गए हैं। हालांकि एयरबेस के अंदर अब भी ऑपरेशन जारी है। एयरबेस को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सऊदी अरब ने ईरानी राजनयिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ देने के लिए कहा है। शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। सऊदी विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने रविवार को कहा था कि उनके देश ने ईरान के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म कर लिए हैं। इस बीच ईरान के धर्मगुरु के फांसी की सज़ा को रियाद की बड़ी भूल बताते हुए कहा कि उसे कभी भी नहीं भूलेगा। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ में सेना और चरमपंथियों के बीच गंभीर संघर्ष जारी है। ये चरमपंथी भारतीय वाणिज्य दूतावास के भीतर घुसने की नाकाम कोशिश के बाद पास की एक इमारत में छिप गए हैं। अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि विशेष बल तैनात किए गए हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए रात को अभियान रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बीच कम से कम एक नागरिक घायल हुआ है। प्रांत के गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा
اینا مذاهبشان تقسیمات شده که یک
सुरक्षा एजेंसियों की कई टुकड़ियां इलाके में तैनात की गई हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इमारत के भीतर घुसकर हमलावरों पर काबू पाना है। हम आगे के घटनाक्रमों से आपको अवगत कराते रहेंगे। प्रांत के गवर्नर अता मोहम्मद नूर के शब्द। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत अमर सिन्हा का कहना है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। इससे पहले रविवार देर शाम उत्तरी शहर मजार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया और वाणिज्य दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश की थी। खराब वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 अंकों तक लुढ़क गया है, यानी बाजार में 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 190 अंक टूटकर 26,000 से नीचे आ गया। सोमवार को शेयर बाजार 25,623 अंकों पर बंद हुआ। इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक पुरुष और एक नाबालिग ब्रितानी जबान बोलते हुए 5 लोगों का कत्ल करते हुए दिखाई दिए हैं। इस्लामिक स्टेट का कहना है कि मारे गए लोग ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे। 10 मिनट के इस वीडियो में ब्रिटेन में हमले की चेतावनी देते हुए इसे प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के लिए संदेश बताया गया है। इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। ब्रितानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस वीडियो की जाँच कर रहे हैं। जस्टिस लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट में सुधार से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। समिति ने इस रिपोर्ट में BCCI में बदलाव के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। कमेटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाना चाहिए और सरकारी अफसरों और मंत्रियों को BCCI से बाहर रखा जाना चाहिए। BBC समाचार।
स्वागत है आपका BBC हिंदी सेवा के कार्यक्रम दिन भर में। आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। श्रोताओं, आज भी सबसे बड़ी खबर पठानकोट, जहां शनिवार तड़के हुए हमले को अब लगभग 60 घंटे होने को आए हैं, लेकिन चरमपंथियों से निपटने के लिए सेना का अभियान वहां अब भी जारी है। NSG ने आज 5वें हमलावर के मारे जाने की पुष्टि की। इधर दिल्ली में पठानकोट के हालात को लेकर आज फिर प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर से पठानकोट के हालात को खुफिया तंत्र की नाकामी मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि समय रहते चरमपंथियों को एक निश्चित इलाके तक सीमित कर दिया गया और इसीलिए एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के एक संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया को बताया है कि पठानकोट में अब तक कुल 5 चरमपंथी मारे गए हैं और एयरबेस के अंदर अब भी ऑपरेशन जारी है। एयरबेस को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पठानकोट में हुए चरमपंथी हमले पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सुरक्षा सेनाएं बहुत अधिक मुस्तैद थी और वे हमले के नुकसान को बहुत अधिक बढ़ने से रोक पाने में कामयाब हुई हैं।
जो एनकाउंटर हुआ उनके साथ फायरिंग जो चली है 2-2.5 दिन की, उस एनकाउंटर में हमारे 1 जवान शहीद हुए। 5 जवान पहले शहीद हो गए जब उन्होंने फ्लैश एक्शन किया आरंभ में, और बाद में 1 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की शहीदी हुई जब वो बॉडी को के साथ डील कर रहे थे। बहुत खेद और अफसोस है पूरे राष्ट्र को कि ये हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन ये उद्देश्य था सिक्योरिटी फोर्सेस का कि मिनिमम कैजुअल्टीज हों, उनको या पकड़ लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचाया जाए जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल हुए।
पत्रकारों की ओर से इस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर जेटली का कहना था,
ऑपरेशन चल रहा है, कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा। वेल आई थिंक लेट द ऑपरेशंस गेट ओवर एंड इट्स ओनली देन दैट गवर्नमेंट्स टेक अ व्यू ऑन सच।
उधर मोहाली में पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से पाकिस्तान के सिम कार्ड और 2 ऑटोमेटिक राइफलें भी बरामद की गई हैं। मोहाली के SSP ने ये जानकारी देते हुए कहा,
मोहाली पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है जिसमें 3 बड़े ड्रेडेड और नोटोरियस क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया है, गुरजंट सिंह एलियस पोलू, जितेंद्र सिंह और संदीप सिंह।
पठानकोट में हुए चरमपंथी हमले के बाद पंजाब में अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जगह जगह सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते इन 3 लोगों की गिरफ्तारी को भी पठानकोट हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। पठानकोट के इलाकों में चरमपंथियों की तलाश के लिए सेना का अभियान शुरू हुए लगभग 50 घंटे बीत चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी इस इलाके में 2 और चरमपंथी छुपे हो सकते हैं। हमले के पूरे 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि छिपे हुए चरमपंथी कहाँ हैं।
ये थी रोहित जोशी की रिपोर्ट। शनिवार तड़के एयरबेस पर हमला हुआ और चरमपंथियों को वहां से पूरी तरह हटाने या उन्हें मार गिराने के लिए अभियान अब भी जारी है। इस बीच कई लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि एयरबेस खुद सेना का अपना है और हमले के अंदेशों को लेकर उसे पहले भी जानकारी मिली थी। यही सवाल मैंने भी किया रक्षा विश्लेषक प्रवीण स्वामी से।
देखिए, सवाल ये नहीं है कि 72 घंटे या 90 घंटे लगे, सवाल ये है कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे सैनानिकों की जान बचाई जा सकती थी। अगर आप देखें इस ऑपरेशन में क्या हुआ है, तो पहले ही झटके में 5 जवान मारे गए डिफेंस सिक्योरिटी कोर के, जिससे स्पष्ट है कि वो फोर्स जो ज्यादातर आर्मी से रिटायर किए हुए जनों की बनी हुई है, वो ना ऐसे हमले के लिए तैयार थे ना उसको रोकने की उनकी ट्रेनिंग थी। दूसरी बात है कि शुरू में जितने फौजी इस काम को संभालने के लिए लगाए जाने चाहिए थे नहीं लगाए गए। पठानकोट इलाके में ही 50,000 से ज्यादा फौज है, उनमें कई सारे पलटन है जिनकी जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग है, कई सालों से वहाँ काम किया है, लेकिन एयरबेस पे बहुत कम फौज डिप्लॉय की गई, शायद 50-60 2 कॉलम की बात हो रही है, 50-60 फौजियों की। तो ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग बहुत खराब थी, शायद फोर्सेस को पूरी समझ नहीं थी कि कितने रिसोर्सेज उनको चाहिए होंगे ऐसे बड़े 25-26 किलोमीटर के एरिया को संभालने के लिए।
जी, सरकार हालांकि मानने को तैयार नहीं है कि जब पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बेहतर तरीके से कदम उठाए जा सकते थे क्या?
इसमें सबसे बड़ी मेरे ख्याल से कंसर्न की बात या हैरानगी की बात ये है कि पठानकोट में ऐसे हालत को संभालने के लिए कोई पहले से प्लान नहीं बनाए गए थे। ये भारत में किसी को हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए कि दहशतगर्द किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, और खासतौर से उन इलाकों में जहां सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, फौजी इंस्टॉलेशन। लेकिन पठानकोट में कोई पहले से प्लान नहीं बनाए गए थे कि ऐसे कोई हमला हुए तो फौज कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। और जबकि इस बार एडवांस में इंफॉर्मेशन था सारा कुछ आखिरी वक्त पे ऑर्गेनाइज किया गया, रिस्पॉन्स सारा कुछ आखिरी वक्त पे ऑर्गेनाइज किया गया, और बहुत सारे झगड़े थे कि कौन कमांड में होगा कौन कमांड में नहीं होगा। सालों साल से हम भारत में ऐसे ही कंफ्यूजन देखे आ रहे हैं, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मुझे तो कम से कम बहुत हैरानगी होती है कि ये जानते हुए कि उस एरिया में हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं, इसकी बहुत पहले से तैयारी नहीं की गई थी और प्लान नहीं बनाए गए थे।
जी, इससे पहले 2008 का इतना बड़ा हमला भारत ने देखा, उसके बावजूद भी क्या निपटने की सही रणनीति पर विचार नहीं किया जाता? आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को?
देखिए, 2008 के बाद बहुत उम्मीदें थी कि भारत के सुरक्षा इंतजाम में कोई बड़े सुधार आएंगे। अफसोस की बात है कि ऐसे सुधार नहीं आए। किसी भी दहशतगर्द हमले के मौके पे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, जो मौके पे सुरक्षा सैनानी मौजूद है, उन्हीं को हालत संभालनी होती है, और उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयरेडनेस में कोई खास फर्क नहीं आया है। पंजाब के स्पेशल फोर्सेस का हाल अभी गुरदासपुर में देखा गया था, जहां भी एनकाउंटर बहुत घंटों के लिए चला, और वहां भी जहां कई पुलिस कर्मी मारे गए, और मेरे ख्याल से दोबारा 26/11 के हालात कहीं किसी भी भारत के बड़े शहर में आए तो कहते हुए दुख होता है, लेकिन शायद नतीजा कोई अलग नहीं होगा।
ये थे रक्षा विश्लेषक प्रवीण स्वामी, सवाल उठा रहे थे सेना की तैयारियों पर हमले के हालात से निपटने के लिए। जमीनी हालात पर क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास, जो पठानकोट में है। जी नितिन, पहले अभियान के बारे में आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ अभी हो रहा है, आपके पास क्या जानकारी है?
मेरे पास जानकारी अशोक ये है कि अभियान अभी भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे परसों चल रहा था, यानी अभियान पूरे स्विंग में चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा था, कल जैसा कहा गया था, सरकार की तरफ से बयान आए थे कि सिर्फ दो कथित चरमपंथी अभी मौजूद हैं, चार को मार दिया गया है। शाम को अब से 1.5 घंटे पहले एनएसजी के और जो इस एयरबेस के कमांडर है, उन लोगों ने एक बहुत जल्दी से बुलाई गई प्रेस वार्ता की, जिसमें ये कहा कि 5 अभी तक हमलावर मारे गए हैं और अभी ऑपरेशन ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार खुद ये कह रही है कि 6 हमलावर थे कुल, तो अभी 1 हमलावर एयरबेस के अंदर है जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। दोपहर भर हम एयरबेस के सामने तैनात रहे हैं, और वहां पर तमाम तरह की बख्तरबंद गाड़ियां आती जाती रही हैं, सैकड़ों सिपाहियों को अंदर जाते देखा है, आते देखा है, और लगातार MI-35 और अटैक हेलीकॉप्टर हवा में पूरे पठानकोट से गश्त लगाते रहे।
जी, अभियान जारी है जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसे में शहर के हालात का अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। आप क्या कुछ देख रहे हैं, शहर में कुछ सामान्य जिंदगी बहाल हो रही है, लोग अभी भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं?
अशोक, लोग शहर में बाहर आ रहे हैं। आज मैंने 3 दिनों में सबसे ज्यादा दुकानें शहर में खुली हुई देखी है, लेकिन ज्यादातर लोगों में इस बात का संशय है कि अभी तक ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों की, जैसे मैंने पहले भी कहा है एक दफे, यहाँ के लोगों की ये धारणा थी कि इतना बड़ा मिलिट्री एयरबेस है, इतना बड़ा हवाई अड्डा है, इतनी फौजी प्रेजेंस है यहाँ पर, तो लोगों को एक ढांढस रही है पिछले कई दशकों से कि हम तो फौजों के बीच में रहते हैं, हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन इस हमले ने एक तरह से उनका विश्वास और उनका जो भरोसा था वो तोड़ कर रख दिया है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, जानकारी दे रहे थे पठानकोट से।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और आज की दूसरी बड़ी खबर भूकंप से जुड़ी। पूर्वोत्तर भारत में आज सुबह आए भूकंप में अब तक कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने की बात कही है। पूरी रिपोर्ट के साथ गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
मणिपुर में सोमवार की सुबह आए भूकंप में अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि असम में भी 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मणिपुर में 50 से अधिक घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। भूकंप का केंद्र मणिपुर का तामेंगलोंग जिला था, लिहाजा मणिपुर के साथ असम अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी तीव्रता काफी अधिक थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार NDRF की टीमों को गुवाहाटी से भूकंप प्रभावित इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और मणिपुर के मुख्यमंत्री से भूकंप के हालात पर बात की है। असम के दौरे पर आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को गुवाहाटी में ही मौजूद थे। उन्होंने भूकंप के बाद उत्पन्न हालातों पर कहा,
वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहाँ आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी।
भूकंप के बाद लोग फोन कर तथा मैसेज भेजकर अपनों की सलामती पूछ रहे थे। ट्विटर और फेसबुक पर लोग पोस्ट साझा कर खुद के सुरक्षित होने की जानकारी दे रहे थे। मणिपुर विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी बरारा अपना अनुभव बीबीसी से कुछ इस कदर बताती है।
उठे और फीलिंग आई कि बेड ऊपर नीचे, पहले तो ऊपर नीचे हो रहा था, फिर मेरा होने लगे लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, और फिर उसके बाद हम लोग मैं और क्लीन टू ईच अदर एंड वी स्टैंडिंग व्हाट वाज नथिंग एल्स टू डू।
असम तथा पूर्वोत्तर भारत का ये इलाका भूकंपीय क्षेत्र की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। जाने माने भू वैज्ञानिक पी आर वैद्य कहते हैं,
इसके जो मैग्नीट्यूड जो है वो जो है हमारे नेशनल नेटवर्क में 6.7 मैग्नीट्यूड का मापा गया है। इसका केंद्र जो है वो मणिपुर में, मणिपुर और आसाम बॉर्डर में, यानी इम्फाल से करीब 30-35 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है इसका केंद्र बिंदु था। इसके कारण इंटेंसिटी जो है करीब 7 या उससे ऊपर का इफेक्ट इसमें हो सकता है MMI स्केल के ऊपर, और मॉडरेट डैमेज जो है जो केंद्र बिंदु और उसके आसपास के करीब 50-60-100 किलोमीटर तक जो है मॉडरेट डैमेज होने की संभावना है।
भूकंप ने हमेशा तबाही मचाई है और जिन लोगों ने ऐसे जलजले को नजदीक से देखा है वे यही दुआ करते हैं कि फिर जीवन में ऐसा दिन कभी देखने को ना मिले। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी हिंदी, गुवाहाटी।
और उधर जस्टिस लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट में सुधार से जुड़ी अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। समिति ने इस रिपोर्ट में BCCI में बदलाव के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। कमेटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाना चाहिए और सरकारी अफसरों और मंत्रियों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से बाहर रखा जाए। BCCI को सूचना के अधिकार RTI के दायरे में लाया जाए। क्रिकेट विश्लेषकों ने इन सुझावों को सराहा है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं मरने से पहले इस मैच पे सट्टा खेलना चाहता हूँ, वो भी आपके पैसों से।
हां
नहीं, आपको पैसे देने नहीं है, सिर्फ बोलना है क्या पैसे देने।
क्या राजू भाई, क्या भाव?
इंग्लैंड फेवरेट 8-10।
क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी की ये झलक यूं तो फिल्म जन्नत की है, लेकिन ये आम जिंदगी में होने वाली सट्टेबाजी की असलियत का इजहार भी करती है। भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित जस्टिस लोढ़ा समिति ने सिफारिश की है कि सट्टेबाजी को वैध कर देना चाहिए। क्रिकेट के विशेषज्ञ आशीष शुक्ला कहते हैं समिति की सोच सराहनीय है।
जो सोच है लोढ़ा कमेटी की वो मेरे ख्याल से सही, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वो मैकेनिज्म्स क्रिएट हो जिसमें ये बातें पटरी पे आ सके, सही ढंग से चल सके।
जस्टिस लोढ़ा समिति की रिपोर्ट का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस लोढ़ा ने कहा BCCI में हर राज्य को शामिल करना चाहिए और एक राज्य के केवल एक ही एसोसिएशन को BCCI का मेंबर होना चाहिए।
ईच स्टेट विल बी फुल मेंबर एंड हैव राइट टू वोट।
हर राज्य BCCI का फुल मेंबर होगा और उसे वोट का अधिकार होगा। रेलवेज और सर्विसेज एसोसिएट मेंबर होंगे। ये सुझाव BCCI में हर राज्य को बराबरी की जगह देने के मकसद से दिया गया है। ये थे शब्द जस्टिस लोढ़ा के। आशीष शुक्ला इस सुझाव का समर्थन करते हैं, लेकिन रेलवेज और सर्विसेज जैसी संस्थाओं की पूरी सदस्यता घटाने पर अधिक खुश नहीं नजर आते। आखिर क्यों?
जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है उसकी निगाह में सर्विसेज और रेलवेज इतनी एक रोमांटिक इमेज रखती है उनके क्रिकेट की टीमें। हेमू अधिकारी हो गए, लाला अमरनाथ हो गए, ये सब जुड़े रहे हैं सर्विसेज से और रेलवेज से। एक ट्रेडिशन है भारतीय क्रिकेट में सर्विसेज और रेलवेज का, और अगर इंस्टीट्यूशनल टीमों को इस तरह से बाहर करने की बात होगी तो ये जरूर है कि एक बहुत बड़ी लड़ी जो चली आ रही है इतिहास की वो जरूर टूटेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये सही कदम है।
क्रिकेट विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली कहते हैं समिति के सुझाव भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। उनके अनुसार अगर इन सुझावों पर अमल हुआ तो क्रिकेट का खेल क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के निकट आ जाएगा।
ये खेल खिलाड़ियों का है और ये खेल दर्शकों का है और ये उन्हीं के लिए माना जाएगा। तो ये सबसे मेन थीम जो थी, अगर आप देखें उनकी थीम यही थी कि क्रिकेट क्रिकेटर्स का है और क्रिकेट फैंस का है, और उनके लिए उन्होंने ये सब जो है सफाई की है।
रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। इसके बाद जस्टिस RM लोढ़ा ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में कुछ और अहम सुझाव दिए गए हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को 3 से अधिक कार्यकाल के लिए BCCI का पदाधिकारी न बने रहने दिया जाए। बीसीसीआई में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू हो, खिलाड़ियों का एक संघ और संविधान बनाया जाए, आईपीएल और बीसीसीआई की अलग अलग गवर्निंग काउंसिल हो और क्रिकेट एसोसिएशन का नेतृत्व नेताओं के बजाय क्रिकेट खिलाड़ी ही करें। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। सऊदी अरब में शिया नेता शेख निम्र को मौत की सजा दिए जाने का मामला अब एक बड़े राजनयिक तनाव का कारण बनता जा रहा है। सऊदी अरब के बाद अब बहरीन ने भी ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अनुराग शर्मा से।
सऊदी अरब ने कल ईरानी राजनयिकों को दो दिन के भीतर देश छोड़कर चले जाने को कहा। ये कदम तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद उठाया गया। सऊदी अरब में एक शिया नेता शेख निम्र अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने का ईरान में कड़ा विरोध हो रहा है, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई सऊदी अरब को दैवीय प्रतिशोध की चेतावनी दे चुके हैं। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब जानबूझकर तनाव को हवा दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन जाबेरी अंसारी,
दौलत अरबस्तान सऊदी हयात व मुनाफे खुद,
दुर्भाग्य से सऊदी अरब की सरकार समझती है कि वो इलाके में टकराव और तनाव भड़काकर ही अपना अस्तित्व और हितों की रक्षा कर सकती है। हाल के सालों में उसने ऐसे कदम उठाए हैं और ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे क्षेत्र में तनाव और संकट पैदा हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान को मध्य पूर्व में एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। वहीं बहरीन शिया बहुल देश है लेकिन उसके शासक सुन्नी हैं। शेख निम्र को मौत की सजा दिए जाने पर तनाव इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब और बहरीन दोनों ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। लेकिन सऊदी अरब के न्याय मंत्रालय का कहना है कि सऊदी न्यायपालिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फैसले पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। सऊदी न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता शेख मंसूर अल गफरी कहते हैं,
As a spokesman of the judicial power in Saudi Arabia, I'm not concerned.
न्यायपालिका की शक्तियों का प्रवक्ता होने के नाते मुझे दूसरी आवाजों से फर्क नहीं पड़ता। तथ्यों के आधार पर हम मौत की सजा देते हैं या शरिया कानून पर अमल करते हैं। अब सामने कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो अपने सामने रखे गए तथ्यों पर अपने फैसले देते हैं। इस तरह इस बारे में आ रही प्रतिक्रियाओं पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सऊदी न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। सऊदी अरब में शिया नेता शेख निम्र समेत 47 लोगों को चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार देते हुए मौत की सजा दे दी गई। वहीं ईरान का कहना है कि शेख निम्र किसी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं थे। उधर अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि आपसी मतभेदों को मिटाने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत होती रहनी चाहिए।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे अनुराग शर्मा। और अब कार्यक्रम में बारी आपके पत्रों की, आपकी चिट्ठियों और संदेशों की।
आपकी राय। नए वर्ष में स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, हमारे वर्षांत कार्यक्रमों पर हमें ढेर सारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। किसी को कार्यक्रम बेहद पसंद आए तो किसी ने लिखा है कि ऐसे कार्यक्रम श्रोताओं के मुंह पर तमाचे जैसे हैं। किसी को शिकायत है कि हम सिर्फ अपनी तारीफ की चिट्ठियां ही कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो बहुत सारे श्रोता इस बात पर खुश हैं कि जिन चीज़ों का वो बरसों से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वर्षांत कार्यक्रमों में वो सुनने को मिली। लेकिन साहब, ये आपकी राय है और आपकी राय चाहे मीठी हो या कड़वी, हमें सब मंजूर है। नए वर्ष में आपकी राय लेकर मैं पहली बार हाजिर हूँ। पिछले साल की गलतियों को क्षमा कीजिएगा। आइए नए वर्ष की नई शुरुआत करते हैं। तो ये पहली ईमेल है मोतिहारी बिहार से। मंटू कुमार लिखते हैं, सिनेराग लाजवाब रहा, साथ ही रश्मि जी और जयप्रकाश जी की अद्भुत आवाज, साल की शुरुआत बहुत खूब रही। तो इसी तरह मैं एक के बाद एक आप लोगों की चिट्ठियां लेता रहूंगा और उसमें आपने जो प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं उन्हें पढ़ता रहूंगा। आज जितनी ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां शामिल हो पाएंगी उतना बेहतर है। तो अगली चिट्ठी है रामचंद्र जांगिड़ की। ईमेल लिखा है इन्होंने कि वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में बीबीसी से हमें जो अपेक्षाएं थीं उन पर बीबीसी हिंदी पूर्णतः खरा उतरा है। सब कार्यक्रम एक से बढ़कर एक, काबिले तारीफ, लाजवाब। इसी तरह किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं, सिने राग में शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों पर महती जानकारी हासिल हुई। विशेषकर फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये जानकारी काफी सूचनाप्रद लगी। धन्यवाद। और बीकानेर राजस्थान से देवेंद्र सिंह बरियाह ने लिखा है, वर्षांत कार्यक्रम सिनेराग सुनकर इतना रोमांचित हो गया हूँ कि शब्द ही नहीं खुशी बयान करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। एक खास बात जिसने इस कार्यक्रम को मेरी दृष्टि में और ऊपर चढ़ाया था वो था दो गायकों से उन गीतों को गवाना जिसकी चर्चा हो रही थी। देवेंद्र सिंह बरियाह लिखते हैं, आप चाहते तो उन गीतों के ओरिजिनल फिल्मी गीत भी बजा सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया और इस बात ने बीबीसी हिंदी से मेरा मोह बढ़ा दिया है। तो देवेंद्र सिंह बरियाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल सिने राग कार्यक्रम के बारे में जब हम सोच रहे थे तो यही चीज़ दिमाग में थी कि वो फिल्मी गाने उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग लेने की बजाय कुछ ऐसे लोगों से गवाया जाए जो चाहे बगैर रियाज के गाएं, लेकिन उनकी ओरिजिनैलिटी, उनका जो मूल संस्करण है, मूल आत्मा है, वो आपके सामने आए। और सिने राग कार्यक्रम की अब होती है आलोचना, और आलोचना करने वाले हैं हमारे बहुत पुराने श्रोता जंग बहादुर सिंह। गोल पहाड़ी जमशेदपुर से लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का महत्व कम से कम मेरे लिए अन्य कार्यक्रमों की तुलना में कम रहा है। जिन बातों की चर्चा की गई वो मैं साल के 365 दिन विविध भारती से सुबह 7:30 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संगीत सरिता में सुन चुका हूँ और रोज सुनता हूँ। भाई क्षमा कीजिएगा जंग बहादुर सिंह जी, अगर आप इस कार्यक्रम को सुन के ऊब गए, ये हमारी असफलता है। लेकिन फिर बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सुन के बहुत आनंद आया, तो अभी आप ही तय करें कि अच्छा था या बुरा था, हमसे तो जो बन पड़ा हमने पेश कर दिया। एक ईमेल आया है संबलपुर ओडिशा से, लिखने वाले हैं शिरीष चंद्र पुजारी, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। लिखते हैं, मैंने सोचा कि मैं विविध भारती सुन रहा हूं, पर था बीबीसी हिंदी, सिने राग बहुत पसंद आया। और इसी तरह उत्तराखंड से मोहम्मद मीराज ने लिखा है कि उन्हें सूफियों की दिल्ली कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आपको याद होगा सूफियों की दिल्ली कार्यक्रम प्रस्तुत किया था हमारे साथी मोहनलाल शर्मा के साथ राणा सफवी ने, जो दिल्ली की जानकार हैं, दिल्ली पर उन्होंने किताबें लिखी हैं, और हमारे श्रोताओं को वो दिल्ली के तमाम सूफी दरगाहें जो थीं वहाँ तक ले गईं और उनके बारे में बताया। अगला ईमेल है कांकेर छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं नितेश पंत। नितेश को अचला शर्मा परवेज आलम का रेडियो नाटक बंधक बहुत ही सुंदर लगा, खासतौर पे उन्होंने लिखा है कि आज के युग में रेडियो नाटक सुनकर बिल्कुल वास्तविक अनुभव हुआ, सभी कलाकार अति उत्तम लगे, और आगे लिखा है कि श्रृंखला इनकार्नेशंस की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो नितेश पंत साहब, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और अचला का परवेज का नाटक आपको पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहे, हम कोशिश करेंगे कि इस साल में यानी 2016 में कुछ ऐसा नया दिया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमारे श्रोता हमेशा याद रखें। और एक ये चिट्ठी आई है बल्लूपुरा सीकर राजस्थान से, मोहन बाजिया लिखते हैं, पिछले 7-8 साल से वर्षांत कार्यक्रमों में शायद कोई रेडियो नाटक प्रसारित नहीं किया गया, निराशा होने लगी थी, पर आज नाटक सुनकर लगा कि पुरानी बीबीसी लौट आई है। और ये एक चिट्ठी है हमारे एक नाराज श्रोता की, इनका नाम है आशुतोष कुमार पांडे, गांव पांडेपुर, पोस्ट निमेज, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर, बिहार से। ये लिखते हैं, श्रोताओं के गाल पे इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है कि भारत के सीने में आग हो और हम सिने राग सुन रहे हों। देश का मीडिया कह रहा था पठानकोट लहू लुहान हो गया है, और हम बीबीसी हिंदी रेडियो की आत्ममुग्धता और हठ में, आत्मगान में बीबीसी लिप्त थी, यानी उनका कहना है कि बीबीसी हिंदी रेडियो आत्मगान में लिप्त था। तो साहब, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, जो हम बहुत पहले समय से कहते आ रहे हैं इन कार्यक्रमों में, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हों तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो पसंद आया हो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये सुना। फिलहाल समय हो गया पता बताने का, तो नोट कीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। नमस्कार।
ये थी आपकी प्रतिक्रिया बीबीसी वर्षांत विशेष कार्यक्रमों पर। वर्षांत विशेष कार्यक्रमों की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा और फिल्मों की, यानी बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के लिए कैसा रहा वर्ष 2015। जरूर सुनिएगा आप, लेकिन अब से ठीक 1.5 घंटे बाद कार्यक्रम होगा घटना चक्र, जिसमें ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए हम लेकर आएंगे। और अभी बारी मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने मीडिया को बताया कि पठानकोट में अब तक कुल 5 चरमपंथी मारे गए हैं, हालांकि एयरबेस के अंदर अब भी ऑपरेशन जारी है। सऊदी अरब ने ईरानी राजनयिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ देने के लिए कहा है। शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को सजाए मौत दिए जाने के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजारे शरीफ में सेना और चरमपंथियों के बीच गंभीर संघर्ष जारी है। ये चरमपंथी भारतीय वाणिज्य दूतावास के भीतर घुसने की नाकाम कोशिश के बाद पास की एक इमारत में छिप गए हैं। खराब वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 अंकों तक लुढ़क गया है, यानी बाजार में 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक भाटिया। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम में। अशोक कुमार को अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।